सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीयं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
सो इन नाइन्थ चैप्टर भगवान इज टेलिंग अबाउट द सद्यो मुक्ति। इन एट्थ चैप्टर द क्वेश्चन वाज देयर बाय अर्जुन दैट हाउ कैन आई गेट यू, हाउ कैन आई एक्सपीरियंस यू एट द टाइम ऑफ डेथ। Then Bhagwan said, you have to do upasana number 1, 2, 3. You can do that and you can reach me, and after that you get the knowledge, and it is krama mukti, mukti in stages. But Bhagwan, without any question by Arjuna, is telling about the sadhya mukti. That shows Bhagwan is not interested in the Arjuna of taking that route, krama mukti. ओ या भगवान नहीं चाहते हैं कि अर्जुन जो है क्रम मुक्ति मार्ग पर चले। भगवान चाहते हैं कि अर्जुन जो है सद्यो मुक्ति मार्ग पर आए। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं तुमको ज्ञान विज्ञान सहित ये ज्ञान दूंगा, जिससे क्या होगा, अशुभा संसार से आपकी मुक्ति हो जाएगी। और जो लोग जो है अश्रद्धाधाना है, जिनकी श्रद्धा नहीं है भगवान के अंदर, भगवान को मानते नहीं हैं, जो पाप कर्मी लोग हैं, संसारी लोग जो हैं, तो उनका क्या होता है। भगवान कहते हैं धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम, ये इस आत्मज्ञान को नहीं मानते, उनको प्राप्त नहीं होता है, तो उनका क्या होता है, निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी, वो मृत्यु संसार के चक्र में घूमते रहते हैं। तो अगर हमने इस जीवन में भगवान को नहीं प्राप्त किया तो इसका मतलब हमको कहां घूमना है, जीवन मृत्यु के चक्र में घूमना है। भगवान ने साफ साफ कह दिया। फिर भगवान अपने बारे में बताते हैं, अपने बारे में अपनी विशेषता बताते हैं कि मया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, ये सारा का सारा जगत जो है ये कैसा है कि मेरे द्वारा जो है ये सारा का सारा व्याप्त है। तत्म व्याप्त है, सारा जगत मेरे द्वारा व्याप्त है। कैसे, अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त मूर्तिना का मतलब क्या हुआ, अव्यक्त मूर्तिना का मतलब है कि मेरी व्याप्ति को आप अपनी ज्ञानेंद्रियों एवं मन बुद्धि से नहीं पकड़ पाओगे, अव्यक्त है वो, आप दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे एग्जिस्टेंस इजनेस हमें नहीं समझ में आता है, कहां दिखाई नहीं पड़ता है। अव्यक्त मूर्तिना मस्तानी सर्वभूतानी च न चाहम तेसु अवस्थित है, मस्तानी मेरे में ही सारी भूत हैं, जितने भी भूत हैं, जितने भी चर अचर जो है ब्रह्मा जैसे लेके पिपीलता सब मेरे अंदर में है, मगर मैं उनमें नहीं हूं, मैं उनमें नहीं हूं। मतलब क्या, ब्रह्मा जी से लेकर पिपीलका तक जितने भी उनके ऊपर में अध्यस्त हैं, ये सब के सब उत्पत्ति स्थिति और विनाश वाले हैं। ब्रह्मा जी से लेके पिपीलिका तक जो कुछ भी ब्रह्मन के ऊपर में अध्यस्त है, ये सारे के सारे उत्पत्ति स्थिति एवं विनाशशील हैं। तो भगवान जब कहते हैं मैं उनमें नहीं हूं, तो इसका मतलब क्या है, कि उनके लिए उत्पत्ति स्थिति या विनाश जो है वो मिथ्या है। वो जो है उत्पत्ति स्थिति विनाश जो है ब्राह्मण को नहीं लगता, आत्मन को नहीं लगता, उसके ऊपर नहीं लागू है, भगवान उससे भिन्न है, अलग है। तो मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित, मेरे में सब कुछ है, मेरी सत्ता के कारण सब एग्जिस्ट हो रहा है, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ टेबल चेयर जो कुछ भी है प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस के कारण सब स्थित है यहाँ। मगर मैं टेबल चेयर में नहीं हूँ, टेबल चेयर में नहीं हूँ मतलब टेबल चेयर की तरह विनाशशील उत्पत्ति वाला या स्थिति वाला मैं नहीं हूं, मेरे को वो नियम नहीं लागू करते, इसलिए भगवान कहते हैं मैं उनमें नहीं हूं, मैं विनाश वाला नहीं हूं। तो ये हुआ व्यवहारिक लेवल पर, जो चीजों से हम व्यवहार करते हैं वो व्यवहारिक लेवल पर बात करते हैं। तो यहां पर स्टेटमेंट नंबर एक हुआ मत्स्थानी सर्वभूतानी, नंबर वन। नंबर टू न चाहम तेसु अवस्थित, और तीसरा स्टेटमेंट भगवान जो है पांचवें श्लोक में करते हैं, न च मस्तानी भूतानी, मेरे में कोई भूत नहीं है, मेरे में कोई भूत नहीं है। ये किस लेवल से है? ये व्यवहारिक लेवल से नहीं है, ये पारमार्थिक लेवल से है। पारमार्थिक लेवल ब्राह्मण से आप पूछे आपने सृष्टि बनाई क्या, ना हमने नहीं बनाई, हमने नहीं बनाई है। रस्सी से पूछिए आपने सर्प बनाया, नहीं, रस्सी बोलेगी मैंने नहीं बनाया सर्प। किसने बनाया? आपने बनाया, आपके मन ने बनाया। न च मस्तानी भूतानी, पहले भगवान ने कहा मस्तानी सर्वभूतानी, मेरे में सारे भूत हैं, अब भगवान कहते हैं मेरे में कोई भूत नहीं है। तो एक किस लेवल से बात करते हैं, किस दृष्टि से बात करते हैं? परमार्थिक दृष्टि से। व्यवहारिक दृष्टि से सारे भूत भगवान में हैं, परमार्थिक दृष्टि से कोई भूत है ही नहीं, कोई है ही नहीं वहां पर। पश्चिमे योग मैश्वरम, ओ हो मेरी ये दिव्य लीला देखो, मेरा ये जो है ऐश्वर्य देखो, ये सारी दुनिया को देखो। भूत वृन्न च भूतस्त मम आत्मा भूत भावन, भूत वृत्त मतलब मैं सबका पालन पोषण करता हूं, मतलब मैं स्थिति कारण हूं, और भूत भावन, भावन मैंने सृष्टि करना, मैं ही सबका उत्पत्ति कारण हूं। भगवान कहते हैं मैं उत्पत्ति कारण हूं, मैं स्थिति कारण हूं, मगर मैं मम आत्मा न भूतस्त, मैं भूतों में वर्तमान नहीं हूं। ये जितने के भूत, जितने भी भूत हैं, इनका क्या है, इनका नेचर क्या है, इनका स्वभाव क्या है, कि उत्पत्ति होती है, स्थिति होता, लय होता है, ये मेरे से होते हैं। मगर मेरे को ये नहीं समझ लेना कि मेरी भी उत्पत्ति होती है, मेरी स्थिति होती है, मेरा लय होता है, मैं इन सबसे भिन्न हूं। अब इसके बाद में हम छठा श्लोक देखेंगे।
यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय।
अब ये जो दो श्लोक अभी हमने देखे ना, मत्स्थानि सर्वभूतानि न च तेषु अवस्थितः, और छठे पांचवें श्लोक में हमने देखा न च मस्तानी भूतानी, मेरे में भूत नहीं है। इसको जो है, इस सिद्धांत को दृष्टांत के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा भगवान छठे श्लोक में बताते हैं। तो दो चीजें व्यवहारिक लेवल पर थी, एक परमार्थिक लेवल पर थी। चौथा श्लोक व्यवहारिक लेवल पर है, व्यवहारिक स्तर पर है। मत्स्थानी सर्वभूतानी न चासम तेषु अवस्थित, ये व्यवहारिक लेवल है। स्टेटमेंट नंबर वन मत्स्थानी सर्वभूतानी, सारे भूत मेरे में हैं। स्टेटमेंट नंबर टू न चाहम तेषु अवस्थित, मैं उनमें नहीं हूँ, मैं विनाशशील नहीं हूँ। और तीसरा स्टेटमेंट है न च मत्स्थानी भूतानी, मेरे में भूत नहीं है। ये तीन स्टेटमेंट को भगवान जो एक उदाहरण से, एक एग्जाम्पल से, एक दृष्टांत से बताने जा रहे हैं। तो इस दृष्टांत में आकाश का दृष्टांत है, और आकाश के दृष्टांत से भगवान बताने जा रहे हैं कि मैं सर्वव्यापी स्वरूप हूं, मैं सर्वव्यापी हूं। नंबर वन। दूसरा भगवान बताएंगे कि हम मैं असंग हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं असंग हूं। और तीसरा भगवान बताएंगे कि मेरे को छोड़कर और दूसरा कुछ नहीं है। परमार्थिक दृष्टि से तीसरा हमने देखा था ना, कोई भूत मेरे में है ही नहीं, पांचवें श्लोक में देखा था। तो ये तीन स्टेटमेंट को हम इसके ऊपर में देखेंगे दृष्टांत के द्वारा। एक भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं, यथा आकाश स्थित नित्यम वायु सर्वत्र का महान। जैसे आकाश में स्थित है, क्या कौन स्थित है, सदा नित्यम वायु स्थित है। कैसी वायु है ये, सर्वत्र का, सब जगह वायु है, वायु सब जगह है। हम यहां से अगर भारत चले जाएं वहां भी वायु मिलती है, आप जापान चले जाओ वहां भी वायु मिलती है, पृथ्वी पर जहां चले जाओ आपको वायु मिलती है। और ये वायु कैसी है, महान है। महान का मतलब परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, शक्तिशाली भी है वायु। वायु शक्तिशाली भी है, परिपूर्ण है। तथा सर्वानि भूतानि मस्तानि तो पधारे है। ठीक उसी तरह से जैसे वायु आकाश में स्थित है, उसी तरह भगवान कहते हैं तथा सर्वानि भूतानि, जितने भी भूत हैं ब्रह्मा से लेके पिपीलिका तक, मत्तानि तो पधारे है, वो संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, सबके सब मुझ में स्थित हैं। जैसे वायु आकाश में स्थित है, वैसे ही सारे भूत मेरे में स्थित हैं, ऐसा उपधारे है, ऐसा जानो। तो भगवान कैसे हैं, तो भगवान हमने कई जगह देखा है, असंगो नहीं सज्जते, बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, असंग है नहीं सज्जते, भगवान अटैच नहीं होते किसी के साथ में, असंग है वो। असंगो ही पुरुष है, ये भी आपने सुना होगा, वो पुरुष परमात्मा कैसा है, वो असंग है। अनुमात्र न संबंधयते, ब्रह्म सूत्र में आता है, अनुमात्र ये इतना भी टच नहीं करता है ना, वो संबंध नहीं है। भगवान इतना सा भी जो है इस दुनिया से या किसी वस्तु से संग नहीं करते हैं। तो ये भगवान का सर्वव्यापकता एवं असंगता दिखाने के लिए भगवान आकाश का उदाहरण देते हैं। तो आकाश कैसा है, सर्वव्यापी है, सबको अवकाश देता है, अवकाश देता है मतलब सबको स्पेस देता है, आकाश जो है सबको स्पेस देता है, और बिना आकाश के कुछ नहीं हो सकता। और वायु आकाश में स्थित है, कहाँ स्थित है, सर्वगता है, सब जगह है, महान है, महान का मतलब परिपूर्ण है और शक्तिशाली भी है। महान के दो वर्ड हुए, परिपूर्ण और शक्तिशाली। अब जैसे टॉर्नेडो आ जाता है, कितना शक्तिशाली है, वायु है, शक्तिशाली है। तो इस वायु की शक्ति से आकाश नहीं कभी प्रभावित होता, आकाश को कभी भी आप देखेंगे नहीं कि वो कभी प्रभावित होता है, या बारिश से गीला होता है, या गर्मी से सूख जाता है, या टॉर्नेडो से कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, अग्नि से कुछ नहीं होता, उसको स्पेस को कुछ नहीं होता। वो आकाश का उदाहरण क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं कि आकाश के अंदर ही पंचमहाभूत हैं। सबसे पहले आकाश था, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ये आपने देखा हुआ है। तो किसमें है सब, आकाश में ही है ना पंचमहाभूत, आकाश जो है सबको अवकाश दे रहा है। अच्छा देखो, एक चीज जो देखने वाली समझने वाली है, आकाश सूक्ष्म है, वायु उससे स्थूल है, आकाश से स्थूल है। आकाश बिना वायु के रह सकता है, वायु बिना आकाश के नहीं रह सकती। अगर आकाश ना हो तो वायु भी नहीं रह सकती है। अच्छा, वायु आकाश को प्रभावित नहीं कर सकती, वायु कभी आकाश को नाश नहीं कर सकती। हम इससे ये एक निकाल सकते हैं, एक इन्फ्रेंस ले सकते हैं कि ग्रॉस कभी भी सटल को नाश नहीं कर सकता। कोई भी ग्रॉस वस्तु जो है, स्थूल चीजें जो हैं, वो सूक्ष्म को नाश नहीं कर सकती। वायु जो है आकाश के कंपैरिजन के अंदर में स्थूल है और आकाश सूक्ष्म है। उसी तरह इदम पर, इदम जितना भी है ना, जो इदम इदम करके हम देखते हैं, वो सारा का सारा शुद्ध अहम पर आधारित है। देखो हम सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं, इदम इदम करके जो भी हमें समझ में आता है या इदम इदम वृत्ति जो हमारे मन के अंदर उठती है वो सब के सब किसके ऊपर आधारित है? शुद्ध अहम के ऊपर। मैं अहम वृत्ति की बात नहीं कर रहा हूं। इदम वृत्ति जो है, अहम वृत्ति भी जो है, किसके ऊपर आधारित है? सारे के सारे शुद्ध अहम के ऊपर आधारित है। तो इदम वृत्ति क्या शुद्ध अहम को प्रभावित करती है? नहीं करती है। नहीं करती। ये हमने कई बार देखा है कि जो है इदम वृत्ति शुद्ध अहम को प्रभावित नहीं करती। हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में जो कुछ भी चल रहा है, हमारे शरीर में जो कुछ भी सुख दुख अनुभव होता है, वो आत्मा को कुछ नहीं कर पाता। आत्मा उससे प्रभावित नहीं होता है। ये तो हमने आगे भी देखा हुआ है, कई बार देखा है। गुरुदेव एक उदाहरण देते थे कि जैसे मेरा कुत्ता कान खुजला रहा है, मेरा कुत्ता, अब वो कुत्ता खुजला रहा है तो मेरे को कुछ होता है क्या? नहीं होता है ना। मेरा कुत्ता हम कहते हैं ना। जब मेरा शरीर आपको तकलीफ देता है तो मेरे को कुछ होता है क्या? आत्मा को कुछ नहीं होता। देखो उसी एग्जाम्पल से समझो, मेरा कुत्ता कान खुजला रहा है, तो जिसका कुत्ता है क्या उसका कान खुजला रहा है? उसको कुछ होता है क्या? नहीं होता है। मेरा कुत्ता, जब मेरा शरीर आता है, अब कुत्तों को छोड़कर शरीर ले लो, मेरे शरीर में तकलीफ हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, पांव में दर्द हो रहा है या दूसरा कोई कष्ट है, तो मेरी आत्मा कुछ होता है? नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। तथा सर्वानि भूतानि मस्तानि तुभधार है, उसी तरह जानो सारे भूत मुझ में है और मुझे प्रभावित नहीं करते हैं। मुझे प्रभावित नहीं करते हैं। सारे के सारे भूत जो हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, तकलीफ में हैं कि अच्छे हैं, आनंद कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो परमार्थ दृष्टि से जगत है ही नहीं। परमार्थ दृष्टि से जगत है ही नहीं, क्योंकि आप जो पांचवें श्लोक में देखेंगे, न चमस्तानी भूतानी, मेरे में कोई भूत ही नहीं है। कैसे भगवान ये कह रहे हैं? परमार्थ दृष्टि से कह रहे हैं। हम लोग विवेक चुड़ान में भी देख रहे थे ना, जिसको अनुभव हो गया, अनुभव हो गया, तो वो क्या कहता है, अरे ये जगत मेरे को जो दिखाई दे रहा था वो अभी कहाँ हो गया, खत्म हो गया है, तो जगत नहीं है। उसका ड्रीम नंबर 1 फोल्ड हो गया, जैसे मेरा ड्रीम नंबर 2 फोल्ड रह देता था ड्रीम नंबर 1 में, उसी तरह से जो जागृत अवस्था से भी परे तूर्य अवस्था में चला जाता है, उसका ये जागृत अवस्था वाला ड्रीम नंबर 1 भी फोल्ड हो जाता है, खत्म। अब उसको जगत नहीं दिखाई पड़ रहा है ही नहीं जगत। तो परमार्थ दृष्टि से नचमस्तानी भूतानी। तो भगवान ने आकाश एवं वायु का उदाहरण दिया, दोनों की रियलिटी एक समान है। देखो आकाश और वायु दोनों ही पंच महाभूत के भूत है ना, उनकी रियलिटी एक किस्म की है, उनका नेचर एक किस्म का है, वो सारे के सारे नाशवान हैं, उनमें सब में परिवर्तन होता है, दोनों एक किस्म के हैं। मगर जगत और ब्रह्मन दोनों तो रियल नहीं है। ब्रह्मन और जगत का नेचर तो भिन्न है। अगर मान लो, अगर हम ये मान लें कि ब्रह्मन और जगत दोनों ही रियल है, हमें पता है ब्रह्मन और जगत दो अलग अलग चीजें हैं, एक आत्मा है एक अनात्मा है, अनात्मा का नेचर अलग है, आत्मा का नेचर अलग है। मगर भगवान ने जो एग्जाम्पल दिया आकाश और वायु का, आकाश और वायु का जो है उनका जो रियलिटी है एक किस्म का है, एग्जाम्पल के अंदर रियलिटी एक किस्म का है। और अगर जगत और ब्रह्मन को लें तो ये रियलिटी उनकी एक किस्म की नहीं है, जगत नाशवान है और ब्रह्मन नाशवान नहीं है। तो इस उदाहरण से कैसे बैठेगा? अब हमने तीन स्टेटमेंट देखे, मत्स्थानी सर्वभूतानी, सारे भूत मुझ में हैं, जैसे वायु आकाश में है, ये तो समझ में आ गया व्यवहारिक दृष्टि से, कोई तकलीफ नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट, न चाहम तेसु अवस्थित, मैं उनसे प्रभावित नहीं होता है होता हूं, जैसे वायु आकाश को प्रभावित नहीं करती है, वैसे ही मेरे ऊपर जो अध्यस्त चीजें हैं ये सारा जगत मेरे को प्रभावित नहीं करता, ये भी हमको समझ में आ गया, ये भी ठीक है। मगर तीसरा स्टेटमेंट, न चमस्थानी भूतानी, भूत मुझ में नहीं है, अब कैसे प्रमाण करें कि वायु आकाश में नहीं है? देखो यहां पर आके आपको थोड़ा समझना होगा। तीसरा स्टेटमेंट था कि मेरे में कोई भूत नहीं है, न च मस्तानी भूतानी, भूत मुझ में नहीं है। अब हम कैसे प्रमाण करें कि वायु आकाश में नहीं है, ये हमको प्रमाण करना है ना। इसका एक ही तरीका है। क्या तरीका है? वासुदेव सर्वमिदम, ये सब कुछ वासुदेव है, दूसरा कुछ है ही नहीं है। आकाश भी वासुदेव है, वायु भी वासुदेव है, अग्नि भी वासुदेव है, उसको छोड़कर दूसरा कुछ है ही नहीं। एकमेव अद्वितीयम, एक ही है सब कुछ, तो ब्रह्मन होके बैठे हुए हैं सब कुछ। और या नेह नाना अस्ति किंचन, यहां तो नाना तो कुछ नहीं है, एक है केवल ब्रह्मन। इस दृष्टि से आप देखेंगे तो आपका ये परमार्थिक सत्य यहां बैठ जाएगा, न चमस्तानी भूतानी, मेरे में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो मतलब वायु क्या है, फिर अग्नि क्या, सब वासुदेव है, सब भगवान है, सब ब्रह्मन है, सब ब्रह्मन है। आपको याद होगा हम लोगों ने चौथे अध्याय में पढ़ा था, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मनाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, सब कुछ ब्रह्म है। जिस चीज से हम हवन करते हैं वो भी ब्रह्मन है, चमस वो भी ब्रह्मन है, जो उसमें घी डालते हैं वो भी ब्रह्मन है, जो अग्नि है वो भी ब्रह्मन है, हवन करता भी ब्रह्मन है, जिस देवता के लिए हम करते हैं वो भी ब्रह्मन है, जो फल हमको मिलेगा वो भी ब्रह्मन है, जो मंत्र उच्चारण करते हैं वो भी ब्रह्मन है। देखो ऐसा है, तो ये सम्यक दृष्टि किसकी हुई? उस ज्ञानी की हुई, उस ज्ञानी की सम्यक दृष्टि है। जैसे विवेक चूड़ामणि में भी हमने देखा, उसका ड्रीम फोल्ड कर गया, अब क्या दिखाई पड़ता है उसको, सब जगह ब्रह्मन 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 दिखाई पड़ता है। दीर्घ दृश्य विवेक में भी हम लोगों ने देखा, अस्थि भाति प्रिय नाम रूप, पांच चीजें सब जगह हैं। अज्ञानी नाम रूप देखता है और ज्ञानी अस्थि भाति प्रिय देखता है, यही फर्क है। तो आकाश और वायु उदाहरण का प्रयोजन क्या है? आकाश सर्वव्यापक है एवं वायु का आधार है, वायु की शक्ति से आकाश प्रभावित नहीं होता। उसी तरह परमात्मा जगत का आधार है और जगत से प्रभावित नहीं होता। जैसे वायु से आकाश प्रभावित नहीं होता, उसी तरह से जगत से परमात्मा प्रभावित नहीं होता। जगत में जो हो जाए परमात्मा उससे प्रभावित नहीं होता। तो आप जो है तीन जो भगवान ने स्टेटमेंट कहे चौथे और पांचवे में, इसके ऊपर विचार करेंगे और अपना एक नोट बना लेंगे, नहीं तो आपको जीवन भर नहीं समझ में आएगा ये आकाश और वायु के स्टेटमेंट से कैसे हम उसको मिलाएं। भगवान ने तो दृष्टांत दे दिया, आकाश और वायु के एग्जाम्पल से हमें समझाने की चेष्टा की, तो परमार्थिक दृष्टि से हम उसको कैसे एक देखेंगे वायु और आकाश को? वासुदेव इति सर्वम, सब कुछ वासुदेव है, ब्रह्मन छोड़ के और कुछ है ही नहीं, एकमेव अद्वितीयम, वही एक है और कुछ नहीं है, अस्थि भाति प्रिय सब जगह एक है, सर्वात्मभाव ब्रह्मार्पण ब्रह्म भी ब्रह्माग्नो। इस तरह से अगर विचार करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। पहले उसको व्यवहारिक लेवल और परमार्थिक लेवल, व्यवहारिक दृष्टि या परमार्थिक दृष्टि, इसको अलग अलग पहले करना है। दो स्टेटमेंट व्यवहारिक हैं, एक परमार्थिक है, फिर उसको आकाश वायु को दृष्टांत को लेके उस पर विचार कीजिए, विचार करके उसको एकदम स्पष्ट कर लीजिए कि हाँ भाई भगवान क्या कहना चाहते हैं। अब भगवान सब भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का कथन कहेंगे।
सर्वभूतानि कौन्तेय,
सर्वभूतानि कौन्तेय,
प्रकृतिं यान्ति मामिकां,
प्रकृतिं यान्ति मामिकां,
कल्पक्षये पुनस्तानि,
कल्पक्षये पुनस्तानि,
कल्पादौ विसृजाम्यहम्,
कल्पादौ विसृजाम्यहम्।
सर्वभूतानि कौन्तेय, प्रकृतिं यान्ति मामिकां, कल्पक्षये पुनस्तानि, कल्पादौ विसृजाम्यहम्।
सर्वभूतानि कौन्तेय, प्रकृतिं यान्ति मामिकां, कल्पक्षये, कल्पक्षये मतलब जब कल्प का अंत होता है, कल्प एक टाइम है, हम देखेंगे कितना टाइम को कल्प कहते हैं। कल्प छह, जब उस टाइम का अंत होता है तब क्या होता है, सर्वभूतानी जितने भी भूत हैं, एक कुंती पुत्र प्रकृतिम माम प्रकृतिम यान्ति, माम प्रकृति मतलब मेरी प्रकृति को वो प्राप्त हो जाते हैं। और फिर क्या होता है भगवान, पुनः तानी कल्पा दो विसृजामी हम, और फिर जब जब कल्प शुरू होता है तो फिर हम इन सबको सृष्टि कर देते हैं, सबकी सृष्टि हम कर देते हैं। कल्प माने क्या, 1000 चतुर्युग को हम कल्प कहते हैं, 1000 चतुर्युग को कल्प कहते हैं। एक चतुर्युग में कितने वर्ष होते हैं, 43,20,000 वर्ष होते हैं, आपने कई बार सुना है। अब इसको फिर विस्तार से कहें, कलयुग 4,32,000, द्वापर उसका डबल 8,64,000, त्रेता उसका 3 गुना, कलयुग का 3 गुना 12,96,12,96,000, और सतयुग 4 गुन हो जाता है। तो टोटल उसका करके आप देखेंगे तो 43,20,000 होगा, 4,32,000 का 10 times 43,20,000 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 1 कल्प। उसको एक कल्प हम कहेंगे। तो ये एक कल्प जो होता है ना, इतना ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, 12 घंटा, ये 12 घंटा हुआ ब्रह्मा जी का। तो इस 12 घंटे के बाद में फिर ब्रह्मा जी सोने के लिए चले जाते हैं 12 घंटा, तो उतना ही लंबी उनकी रात होती है, 12 घंटे की। हमारे यहाँ जैसा नहीं है, कभी रात जो है 16 घंटे की होती है, कभी 8 घंटे की हो जाती है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी की रात 8 घंटे की होती है, 12 घंटे की होती है, और दिन भी 12 घंटे का होता है। उस 12 घंटे वाली रात में, ये एक दिन की बात होती है, एक दिन की रात में 3 लोक जो है उनका प्रलय हो जाता है, भू भुवस्व 3 लोक का प्रलय होता है। और इस तरह से ब्रह्मा जी की लाइफ जो है 100 साल है, 100 साल। जब 100 साल पूर्ण हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, उनका भी काल खत्म हो गया। फिर क्या होता है, बोले 14 लोक जितने बने थे, 14 के 14 लोक जो है वो पुनः चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, प्रलय हो जाता है, फिर सूक्ष्म रूप से वो पहुंच जाते हैं। तो भगवान की सृष्टि और उत्पत्ति एवं लय का कारण है, भगवान के कारण ही ये सब हो रहा है। तो ये भगवान है कौन, परमात्मा है कौन, ब्रह्मन प्लस माया। ब्रह्मन तो सृष्टि करता नहीं है, जैसे ही हमको सृष्टि का अगर आपको समझाना होगा तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि ब्रह्मन सृष्टि करता है। कौन सृष्टि करता है, फिर हमको ईश्वर को लाना पड़ता है। ये ईश्वर कौन है, ये ईश्वर वो है जिसके ब्रह्मन है, जिसके पास माया की शक्ति है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, सर्वभूतानी समस्त प्राणी कल्पचये, कल्पचये ने प्राकृतिक प्रलय या महाप्रलय, देखो 2 प्रलय हम आपको बता रहे हैं आज यहाँ पर। एक प्राकृतिक प्रलय है जो ब्रह्मा जी के हर रात में आता है, जिसमें 3 लोक जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं, भू भुव स्व, और एक दूसरा जो है महाप्रलय। महाप्रलय कब आता है, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होने पर महाप्रलय। तो ये क्या होता है, इन दोनों टाइम में कल्पा दो ब्रह्मा जी के आने पर पुनः सृष्टि हो जाती है, और ब्रह्मा जी के सोने के टाइम में वो सारे के सारे लय हो जाते हैं, सब के सब खत्म हो जाते हैं। अब यहां ख्याल करने की बात है कि यहां भगवान कहते हैं मामिकाम, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति में यान्ति मामिकाम कल्पचये मामिकाम। भगवान कहते हैं मुझसे, अरे आप भगवान, आपने 8वें अध्याय में 18वें श्लोक में कहा था सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, प्रजापति आपने कहा था, ये एक एक अध्याय में आप बदली करते जाते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां इसका मामिकाम का मतलब हुआ कि ब्रह्मा के रूप में भी भगवान बैठे हुए हैं, ब्रह्मा के रूप में वही परमात्मा बैठा हुआ है, ये हुआ मामिकाम। देखो हमारी सृष्टि, जैसे हम सोने जाते हैं तो क्या होता है, आप अपनी देखो, अपने ऊपर जो विचार करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। हम जब रोज रात को सोते हैं तो हमारे सारे विश्व का प्रलय हो जाता है कि नहीं, हमारे जितने भी अनुभव है सब कुछ खत्म हो जाते हैं, सब बीज रूप में चले जाते हैं। तो आपकी वासना खत्म हो जाती है क्या, नहीं, जो सुख दुख आज दिन में था वो कल फिर वो स्थिति रहेगी, वो स्थिति फिर रहेगी। ठीक उसी तरह से कल्प छह में क्या होता है कि टोटल माइंड जो है, ये हमारा इंडिविजुअल माइंड की स्थिति है, व्यष्टि मन। समष्टि मन क्या होता है? जब ब्रह्मा जी हैं क्या वो समष्टि मन है? जब वो सोने जाते हैं तो क्या होता है? तो जितने भी जीव हैं भूभुवस्वलोक के, उनके जो भी प्रकृति हैं वो सूक्ष्म रूप से सबके सब वहां पहुंच जाते हैं, सूक्ष्म रूप से। और फिर कल्प आदो में उन सबको फिर से वापस आते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम जब रात को सोने जाते हैं, हमारा अपना जो संसार है वो सारा का सारा फोल्ड कर जाता है। दूसरे दिन क्या होता है? फिर शुरू होता है। हमारा परिवार वैसा ही रहता है, हमारी सिचुएशन वैसी ही रहती है, कोई बदलता नहीं है, एक कंटिन्यूटी रहती है। वहां भी कंटिन्यूटी है, वहां भी कंटिन्यूटी है। आप ऐसा मत सोच लेना कि वो जो है प्राकृतिक प्रलय जो एक दिन के बाद होता है, या जो है दूसरा महाप्रलय जो होता है ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद में, वो सब कुछ अकाउंट खत्म हो गया, बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इंडिविजुअल जीव जो है वो सूक्ष्म रूप से वहां चला जाता है, फिर से वो सृष्टि के टाइम में फिर से वापस आता है। तो जीव का जो है वो उसका चलन जो है, उसका तारतम्य जो है, उसकी यात्रा जो है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, कंटिन्यूस चलती रहती है। अच्छा, अगले श्लोक में भगवान कहेंगे मैं अपनी प्रकृति से ऐसा करता हूं, मैं अपनी प्रकृति से ऐसा करता हूं। कैसे करते हैं भगवान बताइए आप।
प्रकृतिम स्वामवस्तभ्य,
प्रकृतिम स्वामवस्तभ्य
विसृजामि पुनः पुनः,
विसृजामि पुनः पुनः
भूतग्राममिमं कृत्स्नं,
भूतग्राममिमं कृत्स्नं
अवशं प्रकृतेर्वशात्,
अवशं प्रकृतेर्वशात्
प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नं अवशं प्रकृतेर्वशात्।
तो सर्वभूतों की पुनः पुनः उत्पत्ति का कथन यहाँ आ रहा है। देखो कैसे भगवान कहते हैं प्रकृतिम स्वाम अवस्तभ्य, प्रकृति जो है उसको स्वाम मेरी अवस्तभ्य अंगीकार करके। तो मैं जब सृष्टि करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, प्रकृति को माया को अपने साथ ले लेता हूँ। फिर विसृजामि, फिर रचना करते हैं कैसे, पुनः पुनः बार 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 करता हूँ। भूतग्रामम इमम कृष्णम, ये जितने भी भूत हैं कृष्णम सारे के सारे अवसम प्रकृति वसात, और सारे के सारे अवस हैं, प्रकृति के अवस हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। उनको मैं जैसा कहूँगा वो प्रकृति के नियम से उनको वैसे ही चलते रहना होगा। स्वाम प्रकृति अवस्तभ्य, मेरे निर्देशन में मेरे नियंत्रण में ये प्रकृति काम करती है। स्वाम अवस्तभ्य याने मैं मायापति हूँ, मैं उसका नियामक हूँ, मैं उसका नियंत्रक हूँ, माया मेरी दासी है, मैं जैसा कहूँगा माया वैसा करेगी। और अभी दसवें श्लोक में भगवान कहने जाएंगे मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मैं अध्यक्षेण, मैं अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष प्रेसिडेंट, मैं प्रेसिडेंट हूँ यानी मैं मायापति हूँ। और प्रकृते वसात अवसम कृष्णम भूतग्रामम, भूतग्रामम क्या है इमम, वो अवस है, वो अवस है, वो माया के अंडर है, वो माया दास है, वे माया के बाहर नहीं निकल सकते वो, वे सब के सब माया के नियंत्रण में है यानी माया दास है। सारा जगत चेतन अचेतन स्थावर जंगम ब्रह्मा से स्तंभ पर्यंतं ये सब अवस है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, वो अवस चलते रहेंगे। जैसे हमने वासना जो बना ली, हम अवस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, अपनी वासना के अनुसार हमको जीवन या इस जीवन में आपको निर्वाह करना है, उसके बाद भी आपको जीवन उसी के हिसाब से मिला मिलेगा। पुनः पुनः विसृजामी, विविध सृजामी, विसृजामी का मतलब विविध सृजामी, बार बार भगवान प्रकृति द्वारा ऐसा करते हैं। तो भगवान कैसे करते हैं? भगवान जो है प्रकृति को इम्पावर करते हैं। प्रकृति क्या है? जड़ है। भगवान जब उसको शक्ति देते हैं तब प्रकृति काम करना शुरू करती है। मगर भगवान क्या है? बस भगवान असंग है, भगवान असंग है। तो पुनः पुनः का मतलब आपको देखना होगा, ये बार बार सृष्टि होती है। जैसे हम रोज रात को जो है सोने जाते हैं, फिर जो है अगर दूसरे दिन का एक सृष्टि बन जाती है, फिर तीसरे दिन फिर वही सृष्टि, वो कंटिन्यूटी है। हमारा जो है जीवन एक कंटिन्यूस है। एक कर्म हमने आज किया, उसका कंटिन्यूटी सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, वो तो कंटिन्यूस चलता रहता है। हालांकि मेरा संसार रोज फोल्ड होता है, रोज ओपन होता है, रोज फोल्ड होता है, रोज ओपन होता है। भगवान का भी उसी तरह से है, उसी तरीके से है। जैसे इंडिविजुअल का होता है, ठीक वैसे समष्टि में भी होता है। अच्छा, ये पुनः पुनः विसृजामी जो है, अगर कंटिन्यूटी को हम ना माने तो क्या होगा? ये सृष्टि जो है एक कंटिन्यूअस, एक के बाद जो एक चलती रहती है, ये कनेक्टेड है, पीछे से कनेक्टेड है। इस चीज को अगर हम ना माने पुनः पुनः, अगर कई आदमी कहते हैं नहीं यही एक सृष्टि है, पता नहीं आगे हुआ था कि नहीं हुआ, फिर जन्म होगा कि नहीं होगा, तो कुछ लोग होते हैं चार्वाकी लोग उसको कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अभी तो ऋण ले लो बैंक से, घी पी लो, मर जाएंगे थोड़ी ना उसको देने आने वाले हैं, बैंक वाला क्या कर लेगा मेरा, अभी तो इंजॉय कर लो, जैसे तैसे इंजॉय कर लो। उनको ये कर्म की थ्योरी मालूम नहीं है कि अरे फिर दूसरे जन्म में जाके आपको देना भी पड़ेगा आपने जो लिया है। ये लोग सोचते हैं ये सृष्टि बस यहीं खत्म हो गया, अगला जन्म होता है कि नहीं होता मालूम ही नहीं है। तो अगर हम पुनः पुनः सृष्टि को अगर ना माने तो क्या होगा? ये विविधता जो नजर आती है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। विविधता, विविधता हमने कई बार आपको एग्जांपल दिया है कि अगर एक ही समय है एक ही नर्सिंग होम में सी सेक्शन से अगर दो बच्चे जन्म हुए, घड़ी देख के दो डॉक्टर दो सी सेक्शन किया, ठीक एक समय पर दोनों का जन्म हुआ, अब बताइए क्या उनकी कुंडली एक होगी? क्या उनका जीवन एक जैसा होगा? नहीं होगा ना। अच्छा उसको भी छोड़ दीजिए, आप इस दुनिया के अंदर विविधता देखते हैं ना, कोई गरीब है कोई अमीर है, कोई अस्वस्थ है कोई स्वस्थ है, जन्म से ही अस्वस्थ है, विकलांग है, हैं? कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर पुनः पुनः नहीं होगा तो ये विविधता कैसे आई? अगर ये पहली सृष्टि है नई सृष्टि है तो सब तो इक्वल होंगे ना, सब तो एक जैसे होंगे, ये विविधता कैसे आएगी? फिर विविधता तभी आएगी जब तक हम ये ना कहें कि ये सृष्टि पुरानी सृष्टि का ही कैरी फॉरवर्ड है, ये चल रहा है, हमारे कर्मों के अनुसार हमको फल मिलता है। कर्म के अनुसार फल मिलता है मतलब कर्म के अनुसार जो है हमारा जीवन होता है। हम गरीब होंगे कि अमीर होंगे, कि विकलांग होंगे कि स्वस्थ होंगे, कि हम सुख भोगेंगे कि हम दुख भोगेंगे, सब किसके ऊपर निर्भर करता है? सब हमारे कर्म पर होता है। दूसरा रीजन, अगर ये जो है सृष्टि अगर कंटिन्यूटी ना हो तो फिर जो है इफेक्ट विदाउट कॉज हो जाएगा। इफेक्ट मतलब यहां पर जो हम डिफरेंस देख रहे हैं लोगों के अंदर में, वो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे आप बताएंगे? इफेक्ट है, एक आदमी गरीब है एक आदमी अमीर है, अरे कैसे हुआ भाई, उसका कॉज क्या है? तो आप बोलो कॉज तो है ही नहीं, वो तो सृष्टि हुआ ही नहीं। अरे कॉज था भाई, आगे वाली सृष्टि में था, उसका आगे वाले पिछले जन्म में था, पिछले जन्म में था। अभी हम लोग उस दिन भागवत में ही देख रहे थे, पुरुष जब जो है देह को छोड़ता है अगर स्त्री की चिंता करता है तो दूसरा जन्म स्त्री के रूप में आता है वो।
और स्त्री जब जो है अपने पति का चिंतन करते करते देह त्याग करती है तो वो क्या होती है, वो पुरुष बन जाती है। देखो कंटिन्यूटी है कि नहीं, सिद्धांत क्या है, अंतकाल में जो आपने स्मरण किया उसके हिसाब से आपको मिलेगा। जड़ भरत बने थे ना, उनको जो है हिरण का रूप लेना पड़ा, कंटिन्यूटी है। और कॉज विदाउट इफेक्ट हो जाएगा, कॉज मतलब हमने इस जीवन के अंदर अच्छे कर्म किए, अगर हमको दूसरा जीवन ना मिला, दूसरी सृष्टि में अगर जन्म नहीं हुआ तो मैंने जो अच्छे काम किए उसका फल मिलेगा कैसे। सब कर्मों का फल तो एक जीवन में मिलता नहीं है। अगर आप जो है किसी धनी घर में आपका अगर जन्म हुआ है, उच्च कुल में जन्म हुआ है, तो आपके पिछले जन्मों का कर्म के कारण आपको मिला ये, और इस जन्म में हमने किया उसका अगर हमको कैरी फॉरवर्ड अगर ना आगे हो तो फिर ये कॉज जो है हमारा बेकार गया, फिर हम क्यों कर्म करें, अच्छे कर्म कुछ मिलेगा ही नहीं। और चौथा है फिर बंधन और मुक्ति का कोई सवाल नहीं रह गया, अगर यही पहली सृष्टि है यही अंतिम सृष्टि है तो फिर किस चीज का बंधन, किस चीज की मुक्ति, किससे मुक्ति लोगे। हमें तो मुक्ति जो है पुनर्जन्म से लेनी है ना, कि फिर हमारा जन्म नहीं होना चाहिए, चाहे वो महाप्रलय हो चाहे वो आपका प्राकृतिक प्रलय हो, फिर हमारा जो है कभी नहीं होना चाहिए। ज्ञानी का आत्यंतिक प्रलय हो जाता है, आत्यंतिक प्रलय, और फिर उसके लिए नया जीवन नहीं लेना पड़ता, नया शरीर नहीं लेना पड़ता उसको। तो हमको ये समझना होगा कि एक जो है ये सृष्टि में कंटिन्यूटी है, इसीलिए भगवान ने कहा विसृजामि पुनः पुनः, इसमें एक कंटिन्यूटी है, आपका खाता बंद नहीं होता है, आपके कर्म का खाता चालू रहता है, करोड़ों जन्मों के खाते अभी तक चालू है, वो क्लोज नहीं होता है, वो क्लोज नहीं होता है। अच्छा भगवान आप हमको बताओ, आप जो है सृष्टि करते हो, आपने अभी कहा ना कि ये जो है जितनी भी सृष्टि है मेरे द्वारा होती है, मामी काम मैं करता हूँ, कल्प छह सब खत्म हो जाते हैं और कल्प आदो फिर से वापस से विसृजामि आप करते हैं, तो क्या आप करता हो, क्या आप में कर्तृत्व है। इतनी बड़ी सृष्टि आप बनाते हो तो आप हमको ये बताओ कि आप में कर्तृत्व है कि नहीं, आप कैसे असंग हो, आप बनाते हो और असंग भी हो, ये कैसे हुआ। नौवें श्लोक में देखिए,
न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु
न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। ओ धनञ्जय, ये सारे के सारे कर्म मुझको बांधते नहीं है, निबध्नन्ति ये कर्म मुझको बांधते नहीं। क्यों नहीं बांधते भगवान, उदासीन वतासीनम असक्तम तेसु कर्मसु, मैं उदासीन हूँ उनके प्रति, उदासीन हूँ और असक्तम हूँ, उनके साथ में अटैच नहीं करता, संग नहीं करता, आसक्ति रहित हूँ तेसु कर्मसु। अच्छा वे कर्म मुझे नहीं मानते, क्यों, मैं अद्वैत हूँ, कर्म मुझे संसारी नहीं बनाते, कर्म मुझे सुखी दुखी नहीं करते, मैं जीव नहीं हूँ, मैं सीमित नहीं हूँ, अद्वैत कभी द्वैत नहीं होता, उत्पत्ति स्थिति लय मुझे सीमित नहीं करती, जो भी हो मैं उदासीन हूँ। अच्छा भगवान ठीक है, अच्छा आपको क्यों नहीं मानते भगवान, तो देखो यहाँ पर तीन चार चीजें आपको समझने वाली है कि भगवान से ही उत्पत्ति स्थिति लय कर्म होते हैं, मगर ये भगवान को बांधते नहीं है। भगवान ने खुद कहा कि उत्पत्ति स्थिति मेरे कारण होती है, दसवें श्लोक में कहेंगे मेरी अध्यक्षता में ये सारी की सारी सृष्टि हो रही है, मगर बांधते नहीं है। क्यों नहीं बांधते हैं, पहला तो मैं उदासीन हूँ, उदासीन हूं मतलब मैं केवल देखता हूं बस क्या हो रहा है, मैं केवल देखता हूं और कुछ नहीं। दूसरा, मेरे में राग द्वेष नहीं है, मेरे में कोई लाइक डिसलाइक नहीं है। तीसरा, मेरे में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, मैं करता नहीं हूं, मुझे इंजॉयरशिप डुअरशिप दोनों ही कुछ नहीं है। और आगे भी भगवान कह चुके हैं, नैव किंचित करोमि इति, ज्ञानी जब भी करता है तो नैव किंचित करोमि, पांचवें अध्याय में आएगा। सब कुछ करता है मगर चूंकि कर्तापन नहीं है इसलिए नैव किंचित करोमि। भगवान भी सब कुछ करते हैं, नैव किंचित करोमि, क्यों? क्योंकि उसमें कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है। उदासीन व तासीनम असक्तम तेसु कर्मसु, उदासीन, उदासीन मतलब उपेक्षक, केवल देखता हूं, किसी के लाभ या नुकसान से वो लाभान्वित व परेशान नहीं होते क्योंकि वह उत आसीन है। उदासीन का मतलब उत प्लस आसीन, जो ऊपर बैठा हुआ है, देख रहा है केवल, जैसे केवल देख रहा है। जब जैसे मान लीजिए दो बिल्लियां लड़ रही हो तो हम अगर देखते हैं तो कैसे हैं, उदासीन है। दो बिल्ली लड़ रही है किसी एक टुकड़े रोटी के लिए, तो हम क्या किसी का फेवर करते हैं, ये इसको मिले कि उसको मिले, हम कैसे हैं, हम केवल उदासीन है, देखते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। या पर आपको मान लीजिए बहुत ज़्यादा कहीं ट्रैफिक जाम हो, दोनों तरफ से गाड़ियां खड़ी हैं, तो आप उत्सुक हो तो आप गए जाके देखे कि वहाँ पर दो गाड़ी वाले जो दो ड्राइवर हैं लड़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उदासीन, देख रहे हैं भाई लड़ाई ख़त्म हो जाएगी फिर चालू हो जाएगा और क्या, उदासीन हो। आप किसी का पक्ष नहीं लेते हो, देखते हो भाई क्या घटना घटी, चलो अपनी गाड़ी में जाकर बैठो, ये अभी सेटल हो जाएगा फिर चालू हो जाएगा। या आपने जाके देखा एक्सीडेंट हुआ, उदासीन, आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया क्रेन आएगी एम्बुलेंस आएगी 10 मिनट 15 मिनट में फिर चालू हो जाएगा, उदासीन बता देखते हैं। उसी तरह भगवान बैठकर उदासीन बस सृष्टि की उत्पत्ति आदि देख रहे हैं, सृष्टि में क्या है, अच्छा कहीं पर अच्छे अच्छे जो है फूलों की खुशबू भी आ रही है, कहीं ज्वालामुखी से आग निकल रही है, ऐसा भी होता है, कहीं टॉर्नेडो आया हुआ है, हैं? कहीं पर फ्लड आया हुआ है, तो भगवान उदासीन है, भगवान जो है उदासीन है। आसीनम, आसीनम का मतलब क्या हुआ, बैठे हुए हैं आराम से, कैसे बैठे हुए हैं, शुद्ध चैतन्य रूप से बैठे हुए हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, होने दो। जैसे रज्जू के ऊपर सर्प है, रज्जू क्या करता है, रज्जू देखता है बस, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है सर्प है कि नहीं, आप सर्प बोलो या भूत छिद्र बोलो या दंड बोलो या सूखी माला बोलो, जो आपने उसके ऊपर में सुपर इम्पोज करना है कर लो, वो आपकी मन की कल्पना है, रस्सी को क्या फर्क पड़ता है, वो चुपचाप देख रहा है, बोला आपको जो उसके ऊपर में अध्यस्त करना कर लो, जो समझना है समझ लो। असक्तम तेसु कर्मसु, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं लय में असक्त, पूर्ण वैराग्य है, पूर्ण वैराग्य है, कर्म उसे छूते नहीं है भगवान को, और भगवान को कर्म फल भी नहीं चाहिए, कर्म फल भी नहीं चाहिए। तो परमार्थिक लेवल से भगवान असक्त हैं, उनकी उपस्थिति में प्रकृति काम करती है, वह जगत के साक्षी मात्र हैं, कर्म और कर्म फल से अनासक्त हैं, उनमें कर्तृत्व भी नहीं है और अनासक्त हैं, फल में भी कोई लाइक डिसलाइक राग द्वेष की ऐसा मेरे को फल चाहिए ऐसा भी नहीं है। अच्छा, जो भी इस रूप भाव से कर्म करेगा वो भी मुक्त हो जाएगा, जैसे भगवान मुक्त हैं, अगर हम भी उसी भाव से कर्म करें तो हम भी मुक्त हो जाएंगे। तो क्या भाव रखना होगा, तो पहले तो है जगत का मिथ्यात्व आपको जानना होगा कि जगत ये मिथ्या है। मिथ्या का मतलब, मिथ्या का मतलब है ये जगत सारा का सारा परिवर्तनशील है और समय में सीमित है, मिथ्या का मतलब ये विनाशशील है, पहले तो ये जानना होगा। हम तो जान के भी नहीं उसको मानते हैं विनाशशील है, फिर भी हम उसको लगे रहते हैं उसको परमानेंट करने में, चाहे हमारा मकान हो चाहे हमारी दुकान हो चाहे अपना शरीर हो, परमानेंट बनाना है, ऐसा करते हैं ना, हम लोग का मकान जो है हमारे 7 जन्म तक चलता रहे ऐसा मकान होना चाहिए,
ऐसा सोचते हैं हम। साथ पूछते हैं मानो कि यहीं रहेंगी। आप सोचो घर वाले सब इंडिया में भारत में बैठे हैं, आप कहाँ चले आए। आपके माता पिता सोचते होंगे ये मेरे लड़के का घर है, ये मेरी लड़की का घर है, उसके बच्चे होंगे तो फिर उसका ये घर है, ये घर है। ऐसा सोच के वो बहुत प्लान बनाते हैं। इतनी बड़ी ज़मीन है, अच्छा इतना मैंने बना दिया, अब तुम लोग को और ज़रूरत होगी तो और बढ़ा लेना ऊपर में हैं। ऐसा सोच के लोग सब बनाते हैं परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो जगत में मिथ्यात्व का दर्शन, कर्तृत्व का अभाव होना चाहिए, कर्तृत्व का अभाव होना चाहिए। कर्तृत्व का अभाव करने के लिए कर्मयोग से उसमें शिथिलता आती है। कर्तृत्व में शिथिलता के लिए कर्मयोग करना पड़ता है। कर्तृत्व में ढीलापन आता है और कर्मफल में आसक्ति अभाव होनी चाहिए। तो कर्म ईश्वर अर्पण बुद्धि से हो, प्रसाद बुद्धि से कर्मफल हो, और जगत को मिथ्या रूप में देखना होगा। अगर आप ये देखना शुरू कर दो कि ये कर्म करके हमको क्या मिलने वाला है और वो फल भी मिथ्या ही होगा, मिथ्या होगा मतलब नाशवान होगा। आप जितने भी ट्रिलियन डॉलर कमा लो सबके सब नाशवान ही हैं। क्यों? क्योंकि ये लेके आप जा नहीं सकते। अब सृष्टि पुनः पुनः है, जीव की यात्रा चलती रहती है। भगवान ने कह दिया पुनः पुनः, आपकी जीव की यात्रा कब बंद होगी? जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त होने से आपका यात्रा खत्म और आपको फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाना है। तो भगवान को इन सब चीज़ों का ज्ञान है। किन चीज़ों का ज्ञान है? कि सारा का सारा जगत मिथ्या है, नंबर वन। नंबर टू, मैं कर्ता नहीं हूँ, मेरे में कर्तृत्व नहीं है। नंबर थ्री, मेरे को कर्मफल चाहिए, ऐसी मेरी स्पृहा भी नहीं है। तो ना कर्तृत्व है, ना कर्मफल की स्पृहा है, और तीसरा जो है ये जगत सारा का सारा मिथ्या है। इसलिए भगवान नित्य मुक्त हैं। नित्य मुक्त अब टू लेवल पर, व्यावहारिक लेवल पर भी नित्य मुक्त हैं और परमार्थिक लेवल पर भी नित्य मुक्त हैं। भगवान परमार्थिक लेवल पर भी नित्य मुक्त हैं, व्यवहारिक लेवल में भी नित्य मुक्त हैं, क्योंकि कर्तृत्व नहीं है, क्योंकि उनको कर्मफल की स्पृहा नहीं है और वो जानते हैं कि जगत सारा मिथ्या है, इसलिए भगवान नित्य मुक्त है। जीव कैसा है? परमार्थिक दृष्टि से वो नित्य मुक्त है। परमार्थिक दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से, ब्रह्मन की दृष्टि से हम नित्य मुक्त हैं, मगर व्यवहारिक लेवल में, व्यवहारिक लेवल में जब तक हम अज्ञानी हैं तब तक हम बंधन में हैं, तब तक हम जो है बर्थ और डेथ के सर्कल में चलते रहेंगे, साइकिल में चलते रहेंगे। अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया तो व्यवहारिक लेवल पर हम भी मुक्त हो जाएंगे। परमार्थिक लेवल पर हम सब मुक्त हैं। परमार्थिक लेवल क्या है? आत्मा। हम सब कौन हैं? हम ब्रह्मन हैं, मगर हम जानते नहीं हैं। व्यवहारिक लेवल पर, व्यवहारिक लेवल तक अज्ञानी जो है अपने आप को नहीं जानता है, इसलिए वो बंधन में रहता है। वो कर्तृत्व करता होके कर्म करता है और एक कर्मफल की स्पृहा रहती है, इतना फल मेरे को मिल जाए, इसलिए बंधन में रहता है। अगर हमरे में ये ना हो, अगर मेरे को ज्ञान हो जाए, किस चीज़ का ज्ञान? तीन चीज़ों का। नंबर वन, ये सारा जगत मिथ्या है, कर्तृत्व नहीं है। नंबर टू, कर्मफल की स्पृहा नहीं है, तो हम भी मुक्त। भगवान नित्य मुक्त परमार्थिक लेवल और व्यवहारिक लेवल पर तो ही हैं। हम जीव जो हैं परमार्थिक लेवल पर मुक्त हैं, व्यवहारिक लेवल पर भी हम मुक्त हो जाएंगे, हो जाएंगे। कब होंगे? ये तीन चीज़ें याद रखना आप। जगत में मिथ्यात्व का दर्शन, कर्तृत्व का अभाव और कर्मफल आसक्ति का अभाव। तो भगवान क्या करते हैं? माया की सहायता से सृष्टि करते हैं, माया की सहायता लेते हैं। अच्छा, माया की सहायता से सृष्टि करते हैं। अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं, केवल थोड़ा वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, दसवें श्लोक का।
मयाध्यक्षेण प्रकृति,
मयाध्यक्षेण प्रकृति
सूयते सचराचरम
सूयते सचराचरम
हेतुनानेन कौन्तेय
हेतुनानेन कौन्तेय
जगत् विपरिवर्तते मयाध्यक्षेन प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते।
शंकराचार्य जी कहते हैं यहाँ यह शंका होती है कि भूत समुदाय को मैं रचता हूँ। भगवान ने साफ साफ कहा है कि मैं जो है सृष्टि करता हूँ, तथा मैं उदासीन की भांति स्थित रहता हूँ, सृष्टि भी करता हूँ मगर उदासीन की भांति रहता हूँ, यह कहना परस्पर विरुद्ध है। तो इसको समझाने के लिए, इस शंका को दूर करने के लिए भगवान जो है 10वां श्लोक कहते हैं। क्या है ये श्लोक? मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, ये सारी की सारी प्रकृति मेरी अध्यक्षता के अंदर, मेरे नियंत्रण में, मेरे नियम के अनुसार ये सारी की सारी प्रकृति सृष्टि करती है। चर और अचर, मूविंग और इमोबल, जो कुछ भी है। हेतुना अनेन कौन्तेय जगत प्रवर्तते, और इस से ही संसार चक्र घूम रहा है, इस हेतु से ही ये सारा का सारा संसार चक्र घूम रहा है। तो इसको हम लोग और थोड़ा डिटेल में देखेंगे, पूरा देखेंगे अगली क्लास में। ॐ
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम।